दिन भर 18 मई शुक्रवार, मैं हूं आदर्श राठौर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीएस येदियुरप्पा को कल शाम 4 बजे तक साबित करना होगा बहुमत, मगर कांग्रेस बीजेपी के बीच सियासी घमासान जारी।
समय कल का न होना चाहिए, आगे का होना चाहिए। इन दलीलों को नहीं मारा गया और कल के लिए रखा गया है, विश्वास मत।
जनादेश की हत्या करने की ये जो षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी रच रही है वो हम सबके सामने है।
जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर फायरिंग में कम से कम 9 लोगों की मौत। विवेचना में सुनिए 2 दशक पहले पूरे देश को हिलाने वाले तंदूर कांड की कहानी, जांच अधिकारी की जुबानी।
उन दिनों में समझ लीजिए 1 साल बराबर लोगों ने तंदूर खाना बंद कर दिया।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की भाजपा सरकार को कल शाम 4 बजे तक बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा है। कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, लेकिन राज्यपाल ने सबसे ज्यादा 104 सीटें हासिल करने वाली भाजपा को सरकार बनाने का न्योता दिया, जिसके बाद बीएस येदियुरप्पा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कर्नाटक में राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। एक ओर जहां भाजपा ने कहा है कि वो बहुमत सिद्ध कर देगी, वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने उसके एक विधायक आनंद सिंह को गलत तरीके से अगवा कर लिया है। कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर का कहना है कि उनके सभी विधायक एकजुट हैं और कल वो येदियुरप्पा की सरकार गिरा देंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर भारी झड़पें हुई हैं, जिनमें दोनों ओर से 9 लोग मारे गए हैं। भारत का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के हुई गोलीबारी में 4 नागरिक और 1 सुरक्षाकर्मी की मौत हुई है, जबकि पाकिस्तानी सेना का कहना है कि भारत की सियालकोट सेक्टर में हुई फायरिंग में 4 नागरिक मारे गए हैं। भारत और पाकिस्तान ने साल 2003 में संघर्ष विराम समझौता किया था, जिसका आमतौर पर उल्लंघन होता रहता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त ने कहा है कि इसराइल ने यरूशलम में अमरीकी दूतावास खुलने का विरोध कर रहे फलस्तीनियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया है। जैद रायद अल हुसैन संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद के विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे। इसराइल की गोलीबारी में 58 फलस्तीनियों की मौत के बाद अरब देशों ने इस सत्र को बुलाया है। संयुक्त राष्ट्र में इसराइल की प्रतिनिधि ने हमास पर नागरिकों को मानवीय ढाल की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके देश के सैन्य बलों ने अपनी सीमा की सुरक्षा के दौरान हताहतों की संख्या कम से कम रहने देने की कोशिश की। गजा के हालात पर टिप्पणी करते हुए मानवाधिकार आयुक्त जैद राद अल हुसैन ने कहा, एक कब्जाधारी ताकत के रूप में इसराइल गजा में रह रहे फलस्तीनी लोगों का कल्याण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से बंधा है, लेकिन वास्तव में उन्होंने फलस्तीनी लोगों को जन्म से लेकर मौत तक एक जहरीली बस्ती में कैद कर दिया है, जहां उनका कोई सम्मान नहीं है। इसराइल का प्रशासन उनके साथ इस हद तक अमानवीय व्यवहार करता है कि ऐसा लगता है कि इसराइल ने आधिकारिक तौर पर मान लिया है कि इन पुरुषों और महिलाओं का विरोध करने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये थे मानवाधिकार आयुक्त जैद अल राद हुसैन के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चिली में देश के सभी 34 रोमन कैथोलिक बिशपों ने पोप फ्रांसिस को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यहां के धार्मिक नेताओं पर बाल यौन सोशल स्कैंडल को छुपाने के आरोप लगे हैं। पोप के बुलाने पर वेटिकन में कई सप्ताह बिताने वाले बिशप का कहना है कि वो शोषण के पीड़ितों और चर्च से माफी मांग चुके हैं। अब ये स्पष्ट नहीं है कि पोप ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया है या नहीं। पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्राइपल को मार्च में हुए नर्व एजेंट हमले के बाद अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। स्क्राइपल और उनकी बेटी यूलिया और एक पुलिसकर्मी को नर्व एजेंट की चपेट में आने के बाद सेल्सबरी शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। ब्रिटेन ने इस हमले का आरोप रूस पर लगाया था, हालांकि रूस ने इसे खारिज किया था। इस हमले के बाद रूस और ब्रिटेन के बीच कूटनीतिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक में विश्वास मत के लिए कल वोटिंग होगी। अदालत ने इसके अलावा सूबे में नई सरकार के गठन को लेकर और भी कई फैसले दिए। ये फैसले कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर की अर्जी की सुनवाई करते हुए दिए गए हैं। दोनों दलों ने भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बीएस येदियुरप्पा को राज्यपाल द्वारा सरकार गठन के लिए बुलाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं फैसल मोहम्मद अली।
कांग्रेस और जेडीएस की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई तय वक्त सुबह 10:30 बजे शुरू हो गई। सुनवाई लगभग 1.5 घंटे चली, जिसके बाद कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा,
बार बार दलीलें की दूसरे पक्ष ने कि समय कल का न होना चाहिए, आगे का होना चाहिए। इन दलीलों को नहीं माना गया और कल के लिए रखा गया है विश्वास मत।
सूबे के राज्यपाल वाजूभाई वाला ने अपने आदेश में बीजेपी विधायक दल के नेता बीएस येदियुरप्पा को विश्वास मत हासिल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया था। आज दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष के चुनाव और विश्वास मत की प्रक्रिया कल 4 बजे शाम तक खत्म करने का हुक्म भी जारी किया। साथ ही कहा कि विश्वास मत हासिल किए जाने के पहले मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा शासन के सिलसिले में किसी भी तरह का आदेश जारी नहीं करेंगे। गुरुवार को शपथ लेने के बाद येदियुरप्पा ने कुछ अफसरों के तबादले और किसानों की कर्ज माफी का हुक्म जारी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एंग्लो इंडियन समुदाय के किसी व्यक्ति के सदन में मनोनीत किए जाने के मामले पर भी रोक लगा दी है। वकील अभिषेक मनु सिंघवी,
एक और महत्वपूर्ण वक्तव्य रिकॉर्ड किया है कि किसी अतिरिक्त नए एमएलए को एंग्लो इंडियन समुदाय के आधार पर विश्वास मत के पहले मनोनीत नहीं किया जा सकता।
ऐसी अटकलें थी कि बीजेपी एक सदस्य को मनोनीत कर सदन में अपने विधायकों की संख्या को 104 से आगे ले जाने की कोशिश करेगी। ऐसी अटकलें भी थी कि कुछ कांग्रेस और जेडीएस नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। कांग्रेस और जेडीएस ने, जिनके पास दोनों को मिलाकर 116 सीटें हैं, अपने विधायकों को बेंगलुरु से बाहर भेज दिया था। दोनों दलों का कहना था कि हालांकि उन्होंने विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी थी, लेकिन फिर भी उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया गया। जबकि बीजेपी के पास बहुमत से बहुत कम संख्या थी, लेकिन फिर भी गवर्नर ने उसे बुला लिया। कांग्रेस और जेडीएस इन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। बुधवार देर रात को हुई सुनवाई में अदालत ने मामले की अगली तारीख आज के लिए दे दी थी। हालांकि उसने येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब कांग्रेस आज के आंतरिक फैसले को ऐतिहासिक बता रही है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा,
अगर एक पंक्ति में कांग्रेस के विषय में कहना है तो ये कहा जा सकता है कि रिजॉइजिंग आफ्टर रिजेक्शन। पूरी तरह से कर्नाटका में 122 से 78 तक आने वाली कांग्रेस पार्टी रिजेक्शन के पश्चात जिस प्रकार रिजॉइस कर रही है, आनंद मना रही है, उत्साहित हो रही है, वो दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा क्या है। और अगर दूसरे पंक्ति में कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, तो अंग्रेजी में कहना उचित होगा, मर्डरिंग द मैंडेट। मैंडेट अर्थात जनादेश। जनादेश को खत्म करने की, जनादेश की हत्या करने की ये जो षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी रच रही है, वो हम सबके सामने।
कर्नाटक के मामलों में दोनों मुख्य दल कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने तौर पर पेश कर रहे हैं। कांग्रेस जहां गोवा, मणिपुर और मेघालय का उदाहरण दे रही है, जहां सबसे बड़े राजनीतिक दल होने के बावजूद उसे सरकार गठन का न्योता नहीं मिला, वहीं बीजेपी का कहना है कि वो सबसे बड़ा दल है तो गवर्नर ने उसे सबसे पहले न्योता देकर कोई गलती नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के कामकाज के लेखा जोखा के लिए 10 हफ्ते बाद फिर से मिलने का फैसला किया है। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि येदियुरप्पा सरकार को 15 दिनों के बजाय 24 घंटों के अंदर बहुमत साबित करना होगा, कर्नाटक में कांग्रेस के नेताओं और समर्थकों में खूब उत्साह देखा गया। उन्हें एक उम्मीद तो जगी है, मगर बीजेपी दावा कर रही है कि वो आराम से बहुमत हासिल कर लेगी। यानी कल का दिन राजनीतिक उठापटक से भरा रहने वाला है। क्या हालात हैं कर्नाटक में, इमरान कुरैशी बता रहे हैं इस रिपोर्ट में।
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा को सिर्फ 24 घंटों में बहुमत साबित करना होगा, कांग्रेस ऑफिस के सामने कुछ इस तरह का माहौल था। एक तरफ जहां कांग्रेस के समर्थकों में जोश नजर आया, वही पार्टी के नेता आक्रामक तेवरों में नजर आए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम नबी आजाद ने सुप्रीम कोर्ट की जमकर तारीफ की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की सुरक्षा की है। उन्होंने कहा,
लेकिन अरुणाचल प्रदेश हैविंग टू थर्ड मेजॉरिटी रादर थ्री फोर्थ मेजॉरिटी।
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर से कहा है कि मुख्यमंत्री कोई ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जो नीतिगत निर्णय होगा। ये थे गुलाम नबी आजाद के शब्द। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस को राहत तो मिली है, मगर उसकी चिंता बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से जब पूछा गया कि उनके एक प्रमुख विधायक आनंद सिंह अभी तक पार्टी के साथ नहीं है, तो उन्होंने कहा, उनको गलत तरीके से बंधक बनाया गया है, यही कर रही है बीजेपी। वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग कर रही है। ये थे सिद्धरामैया के शब्द। आनंद सिंह के अलावा एक और विधायक प्रताप गौड़ा पाटिल भी लापता हैं। हालांकि उन्होंने कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक में भाग लिया था। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के फौरन बाद फिर से कांग्रेस नेताओं के संपर्क में आ गए हैं। तो बीजेपी इन हालात में क्या कर सकती है? मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा ने कहा, हम राज्य के मुख्य सचिव से बातचीत करके व्यवस्था करेंगे ताकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय का पालन हो। ये थे बी एस येडियुरप्पा के शब्द। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राज्यपाल वाजुभाई वाला ने पूर्व विधानसभा स्पीकर बीपी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर घोषित कर दिया है। आमतौर पर विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है और 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने बोपैया के फैसलों की आलोचना की थी। खास बात यह कि वो सिर्फ 3 बार ही चुनाव जीते हैं, जबकि आरवी देशपांडे 8वीं बार विधानसभा के लिए चुने गए हैं। इस विषय पर कांग्रेस फिर से सर्वोच्च न्यायालय गई है। ऐसे में इस पूरे मामले में अब एक और मोड़ आ गया है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
तो कल होने वाले फ्लोर टेस्ट के लिए कांग्रेस और जेडीएस के विधायक आज रात फिर से बेंगलुरु पहुंच जाएंगे, जिन्हें हैदराबाद ले जाया गया था। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या बीएस येदियुरप्पा कल होने वाले इम्तिहान में पास हो पाएंगे। बीबीसी हिंदी रेडियो पर कल शाम के प्रसारण में इंडिया बोल की जगह आप इसी घटनाक्रम की विस्तृत कवरेज सुन पाएंगे। रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां पर भारत और पाकिस्तान की सीमा पर भारी झड़पें हुई हैं, जिनमें दोनों ओर कम से कम 9 लोग मारे गए हैं। भारत का दावा है कि पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे की हुई गोलीबारी में 4 नागरिकों और सुरक्षा बल के 1 जवान की मौत हुई है। कुछ देर पहले मैंने बात की श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से और पूछा कि अभी तक उनके पास क्या जानकारी है।
जी देखिए, जम्मू क्षेत्र का जो इंटरनेशनल बाउंड्री जिसे भारत कहता है और पाकिस्तान वर्किंग बाउंड्री कहता है, वहाँ के सांबा और दूसरे कई क्षेत्रों में फ्लेयर अप हुआ है आज अर्ली मॉर्निंग से ही। और वहाँ पे जो आर्मी ने अभी तक कंफर्म किए हैं फिगर्स कि 5 सिविलियंस और 1 BSF पर्सनल जो है वो मारे गए हैं। 5 सिविलियंस तो क्रॉस फायरिंग में मारे गए हैं, यानी वो आर्मी का कहना है कि अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान आर्मी ने किया, और बीएसएफ पर्सनल जो है वो स्नाइपर शॉट से उनकी मौत हो गई है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का आरोप है कि भारतीय सेना के जो है भारतीय सेना ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है, जिसमें 3 बच्चों समेत 4 लोग मारे गए हैं।
इस वक्त वहां पे कैसे हालात है, क्या कोई फायरिंग वगैरह इस तरह से जारी है या शांत है?
नहीं नहीं, अब तो शांत है। वैसे भी जम्मू कश्मीर में आज से रेड अलर्ट शुरू किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2 दिन की यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख आ रहे हैं, और यहाँ पे चेक पॉइंट जगह जगह लगे हुए हैं। पूरी तरह से सतर्कता जो है वो बरती जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। लेकिन ये जो बॉर्डर फ्लेयर अप हुआ है, इस पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि उन्होंने रमजान का मान नहीं रखा है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रमजान में जो है लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए ऑपरेशन हाल्ट किए, सीज फायर की घोषणा की, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया। तो इस तरह एक ऐसे वक्त ये फ्लेयर अप हुआ है जब कश्मीर में सभी लोगों को आशा थी कि शांति बहाली में ये सीज फायर की घोषणा जो है बड़ा रोल अदा करेगी, लेकिन बॉर्डर फ्लेयर अप की वजह से ये आशाएं जो हैं ये लगता है कि लोगों में अब दोबारा खौफ पैदा हो गया है।
पाकिस्तानी सेना ने भी दावा किया है कि सियालकोट में भारत की ओर से फायरिंग में उसके 4 नागरिक मारे गए हैं। मैंने इस बारे में बात की इस्लामाबाद स्थित बीबीसी संवाददाता शुमैला जाफरी से।
पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने सुबह प्रेस रिलीज एक इशू किया है और वो ये कहता है कि जो वर्किंग बाउंड्री है सियालकोट में, वहां पे इस फायरिंग से 4 लोग मारे गए हैं, जिसमें 3 बच्चे हैं और 1 महिला है। और पाकिस्तान ने उसके बाद इंडियन जो हाई कमीशन है यहाँ इस्लामाबाद में उनको बुलाया है, उनसे प्रोटेस्ट भी किया है और ये कहा है कि जो इंडियन साइड से फायरिंग हो रही है वो ये पाकिस्तान ये क्लेम करता है, मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है उसमें सिविलियन पॉपुलेशन को। और साथ में ये भी कहा है कि 2018 में सिर्फ 2018 में 1000 से ज्यादा जो है वो सीज़फ़ायर वायलेशन हो चुकी है लाइन ऑफ कंट्रोल पर और वर्किंग बाउंड्री पर, जिसमें सिविलियन जो है वो डिलिबरेटली टारगेट हो रहे हैं। और एक दफा फिर एम्फसाइज किया है कि जो सीज़फ़ायर है उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए।
और आज शुक्रवार है और आज आपको बताएंगे कि आज से 23 साल पहले दिल्ली में एक ऐसा हत्याकांड हुआ था जिसे याद करके आज भी लोग सिहर उठते हैं। युवा कांग्रेस के नेता सुशील वर्मा ने अपनी पत्नी की हत्या करके उनके शव को तंदूर में जलाने की कोशिश की थी। इस चर्चित मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मैक्सवेल परेरा ने की थी। अब उन्होंने एक किताब लिखकर इस हत्याकांड का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया है। आज विवेचना में रिहान फजल इसी हत्याकांड के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर दौड़ा रहे हैं।
भारतीय अपराध जगत के इतिहास में दिल्ली के अशोक यात्री निवास के बगिया रेस्तरां में हुए तंदूर हत्याकांड को सबसे जघन्य और क्रूर अपराध की संज्ञा दी जाती है। 2 जुलाई 1995 को यूथ कांग्रेस के नेता सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी और पार्टी की सदस्य नैना साहनी को गोली मारकर अपने रेस्तरां के तंदूर में जिस तरह जलाने की कोशिश की, उसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। इस हत्याकांड की जांच करने वाले और तंदूर मर्डर द क्राइम दैट शुक द नेशन के लेखक मैक्सवेल परेरा बताते हैं।
तंदूर इज अवन विच इज लेजेंडरी ऑफ इंडियन क्यूजीन। तंदूरी जो खाना होता है उसको इस नजरिया से देखते हैं, बिल्कुल आई मीन दे कांट डू विदाउट दिस थिंग बिकॉज इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द आई विल यूज अ वर्ड लाइक ग्रैंडेस्ट मोड ऑफ कुकिंग। ऐसी चीज को जो इस्तेमाल किया एक बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, एक रिवल्शन हॉरर जो आपके मन में पैदा होता है। उन दिनों में समझ लीजिए 1 साल बराबर लोगों ने तंदूर खाना बंद कर दिया था और तंदूरी खाना बिल्कुल सफर हो गया उस वक्त।
2 जुलाई 1995 को रात 11 बजे कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल जनपद पर गश्त लगा रहे थे। वो गलती से अपना वायरलेस सेट पुलिस चौकी पर ही छोड़ आए थे। तभी उन्हें अशोक यात्री निवास के बगिया रेस्तरां के प्रांगण से आग की लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया। मैंने इस समय केरल के शहर कोल्लम में रह रहे अब्दुल नजीर कुंजू से संपर्क किया और उनसे उस दिन का घटनाक्रम बताने के लिए कहा।
मैं पेट्रोलिंग करते हुए आया तो उस होटल का बगिया नाम का रेस्टोरेंट थे उसमें से आग का लपटे दिखाई दिया था। मैं उसी टाइम दौड़ के गेट पर पहुंचा, ये सुशील शर्मा ये कनात लगा के गेट पर खड़े थे ताकि अंदर जाने नहीं दे रहा था। वो कह रहे थे कुछ नहीं है, आप चले जाओ, हम पार्टी का बैनर वगैरह जला रहे और कुछ नहीं है। लेकिन मैं वहां से वापस तो मुड़ गया लेकिन मुझे मन में कुछ डाउट सा लगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैं पीछे साइड से होटल का बैक साइड से जो दीवार है करीब 8-8.5 फुट का दीवार है, वो दीवार फांद के मैं अंदर गया तो जो दूसरा जो अक्यूज्ड है जो केशव कुमार है वो आग को तेज कर रहा था, बल्ली से उलट पुलट कर रहा था। उससे भी मैंने पूछा, भाई साहब आप आग बुझाने की वजह आप तेज क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हम पार्टी के बैनर वगैरह जला रहे, कुछ नहीं है। इतने में ही मेरा नजर पड़ा उस लाश के ऊपर जिसका आंतड़ी बाहर निकलते हुए दिखाई दिया। तो मुझे डाउट होने पर मैंने केशव से पूछा, भाई साहब ये क्या है? तो केशव ने बोला ये बकरा बूंद रहा है। लेकिन मैं जो अंदरी देखा वो बकरा का अंदरी से डिफरेंस थे तो मैं तसल्ली से जाके, वो तंदूर काफी बड़े थे, उस तंदूर के पास जाकर देखा, बल्ली से उसको थोड़ा हटा के देखा तो वो एक लेडी की लाश थे जिसका हाथ पैर सब जल चुके थे।
करीब 1 बजे रात को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मैक्सवेल परेरा के फोन की घंटी बजी। दूसरे छोर पर उप पुलिस आयुक्त आदित्य आर्य थे। फोन सुनते ही परेरा आनन फानन में अशोक यात्री निवास पहुंच गए।
ایک مجرم کو ہیڈ کانسٹیبل ہاتھ کو ہاتھ پکڑ کر قابو کر لیا تھا اور اس کا تو چہرہ بالکل گرا ہوا تھا اور باڈی وہیں تھی. باڈی ایک بلیک پالیتھین کے اوپر, اٹ واز ان اے فیٹل پوزیشن, جیسا جب جلائی جاتی ہے بالکل لمبس تو نزدیک آ جاتے ہیں. اٹ واز انریکگنائزبل ایکسیپٹ دیٹ ان کا جوڑا پیچھے کا جو بال جلا نہیں ہوا تھا اور تب تک تندور کے کنٹینٹس باہر نکالے ہوئے تھے. اس میں کچھ جو گری ہوئی ہڈیاں پڑی تھی, پاجیب پڑے تھے. ٹارسو کا فرنٹ پورشن تو بالکل لائک اسٹمک برسٹ ہو کر انٹسٹائنز ویئر آؤٹ سائڈ دی تھنگ.
جب نینا ساہنی کا شو جلانے میں دقت آئی تو سشیل شرما نے بگیا کے مینیجر کیشو کو مکھن کے چار سلیب لانے کے لیے بھیجا. اس سمے کناٹ پلیس تھانے کے ایس ایچ او نرنجن سنگھ بتاتے ہیں کہ نینا ساہنی کے شو کو تندور کے اندر نہیں بلکہ تندور کے اوپر رکھ کر جلایا جا رہا تھا.
میں نے موقع پر اندر گھس کر جا کر دیکھا, تندور کے اوپر ایک چارڈ عورت کی لاش پڑی ہوئی تھی. جو تندور ہے وہ تندور کے اوپر ڈیڈ باڈی تھی, تندور کے اندر ڈیڈ باڈی نہیں تھی. اور جس طریقے سے ایک چتا کو جلایا جاتا ہے, اس ڈیڈ باڈی کو تندور کے اندر نہیں ڈالا ہوا تھا.
اب سوال اٹھتا ہے کہ سشیل شرما نے کن پرستھتیوں میں نینا ساہنی کی ہتیا کی تھی اور ہتیا سے ترنت پہلے دونوں کے بیچ کیا کیا ہوا تھا.
تب سشیل شرما نے بتلایا تھا کہ انسیڈنٹ کے بعد میں اس نے ڈیڈ باڈی کو پہلے پولیتھین میں ریپ کیا, پھر چادر میں ریپ کیا, پھر اس کو اٹھا نہیں پایا, ڈریگ کر کے نیچے تک اپنی ماروتی کار میں لایا. تو اس کے من میں آئیڈیا آیا تھا, ایک یہ ایک سوابھاوک ہے کہ اب اس کو ڈگی میں تو رکھ لیا, کار کی ڈگی میں, اس کو ڈسپوز آف کہاں کرنا ہے. تو اس کے دماغ میں یمنا ریور میں اس کو ڈسپوز آف کرنے کا ایک آئیڈیا آیا, لیکن اس آئیڈیا کو اس نے بدل دیا کہ کوئی دیکھ نہ لے, اور اس نے اپنے ہی ریسٹورنٹ میں اس کو جلا کر پورے ثبوت کو, پوری ڈیڈ باڈی کو نسٹ کرنے کا اس کا خیال آ گیا, جو اس نے سیف سوچا. ڈسیز مرت کا نینا ساہنی اور سشیل شرما دونوں مندر مارک کے فلیٹ 8A میں میاں بیوی کی طریقے سے رہتے تھے, لیکن اس شادی کو انہوں نے ایک سماجک طور پر سب کے لیے اجاگر نہیں کیا تھا, لیکن نینا اس کو کنٹینیوس پریس کرتی تھی کہ اس شادی کو اجاگر کرو, اور اس بات سے دونوں میں تھوڑا فرکشن آتا تھا. یہ بھی بات سامنے آئی کہ نینا نے سشیل کے عادت سے, سشیل کے پریشر سے, سشیل کی ایٹروسٹیز سے تنگ آ کر اپنے پرانے متر مطلوب کریم سے مدد کی گہار کی. مطلوب کریم نے اس کی مدد کی اور اس کو باہر بھیجنے کا, وہ آسٹریلیا جانا چاہتی تھی, وہاں جانے کے لیے جو بھی سمبھو مدد تھی وہ مدد کی. سشیل شرما کو نینا کے اوپر شک ہو گیا, جب بھی واپس آتا تھا تو گھر کے لینڈ لائن ٹیلی فون کو چیک کر لیتا تھا, ایک بعد میں کس کس سے بات ہوئی ہے. اور گھٹنا کے دن جب اس کو ری ڈائل کر کے آگے سے مطلوب کا نمبر پتہ لگا, تو پھر اس کو یہ کنفرم ہو گیا کہ نینا مطلوب سے ابھی بھی سمپرک رکھے ہوئے ہے, اور اس نے ویپن کا لائسنس, ریوالور کا لائسنس اس کے پاس لیا ہوا تھا. ریوالور سے جان بوجھ کر اس کی ہتیا کرنے کے ارادے سے فائر کر کے اس کو گولیاں ماری. جب میں موقع پر پہنچا فلیٹ کے, تو جگہ جگہ خون, ریوالور کی ایک لیڈ, اے سی کی ٹی وی میں بلٹ ہول. موقع کا انسپیکشن کرنے سے مجھے یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ اس انسیڈنٹ میں ویپن کا, ریوالور کا, فائر آرم کا پریوگ ہوا ہے.
ادھر سشیل شرما نے ہتیا کرنے کے بعد وہ رات گجرات بھون میں گجرات کاڈر کے ایک آئی ایس ادھیکاری ڈی کے راؤ کے ساتھ بتائی.
سشیل اس دوران دلی چھوڑ کر تو پہلے جے پور گیا تھا, جے پور سے وہ بمبے گیا تھا, بمبے سے مدراس گیا تھا. مدراس میں انہوں نے جو پارٹی کانٹیکٹ سے ایک لائر کے تھرو, اننت نارائن, ان کے تھرو بیل کے لیے, اینٹیسپیٹری بیل کے لیے اپلائی کر لیا, اور وہ تو اینٹیسپیٹری بیل अप्लाई करके वो तिरुपति चले गए अपना चेहरा बदलने के लिए। तब तक हल्ला मच चुका था कंट्री में, फिर भी मद्रास जज ने उनको एंटिसिपेटरी बेल दे दिया। मैंने बात किया कमिश्नर मद्रास से और मैंने एसीपी रंगनाथन को भेजा मद्रास में ये बेल एप्लीकेशन फाइट करने के लिए। जब उनको पता लगा इधर आग लगी है मद्रास में, वो उधर से जाकर लॉयर के साथ जाकर बेंगलोर में सरेंडर करने के लिए कोशिश किया। सो वो पीटीआई की खबर हमें मिली शाम को और एक धक्का लगा हमें। सो उस वक्त रात हो रहा था, मैं मीटिंग रखकर कमिश्नर के साथ डिसाइड कर लिया मैं खुद जाऊं, और नहीं तो फ़ायदा था क्योंकि मैं कर्नाटक का था, मैं वकील भी था उधर पुलिस ज्वाइन करने से पहले।
इस पूरे मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सुशील शर्मा को अपने राजनीतिक संपर्क न इस्तेमाल करने देना। मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि जांच के दौरान भारत के तत्कालीन गृह सचिव पद्मना भैया ने खुद जाकर सुशील शर्मा और नैना साहनी के मंदिर मार्ग वाले फ्लैट का मुआयना किया।
उनमें ऐसा भी न्यूज आई थी जो नैना के लेजॉन्स एलेज किया था मिनिस्टर लोगों के साथ, अपने प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, घबरा गए शायद ये क्या है। सो उन्होंने आईबी से इंक्वायरी रख दी, इनके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी और मिनिस्टर लोग तितर बितर हो गए सारे घबरा कर, हाँ हम हमारे बारे में कुछ ना कुछ, और कई लोग गलत बोल पड़े। किसी ने कहा मैंने कभी देखा भी नहीं उसको, किसी ने कहा नहीं जब से मैंने दूसरी शादी की उसके बाद मैंने किसी लेडी की तरफ देखा ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जब इंक्वायरी वगैरह हो तो क्यों ये केस इतना जो प्रोमिनेंट ले चुका है, और ऑपोजिशन वाले मदन लाल खुराना वगैरह भी फैला रहे थे काफ़ी चीज़ें, और उन्होंने कहा चौहान साहब को जो होम मिनिस्टर थे उनको कहा इसमें थोड़ा खुद देखिए। उन्होंने राजेश पायलट थे उस वक्त मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम एंड, और उनको तो आदेश दिया था तुम ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हो और आप इससे परे हटो। उन्होंने होम सेक्रेटरी को कहा जा खुद जाकर देखने के लिए, बेचारे होम सेक्रेटरी मौके पर पहुँच गए मौका मुलाजा के लिए। अब मजाक की बात है ये सारी चीज, होम सेक्रेटरी ने मगर पहली चीज कहा ये कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर जो है बहुत ज्यादा बोल रहे हैं।
इस जांच में पहली बार डीएनए तकनीक और स्कल इमेजिंग तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया।
मैंने मशेलकर साहब थे जो मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे साइंटिफिक रिसर्च के वगैरह, सो उनसे बात किया मैंने। उन्होंने डॉक्टर लालजी सिंह को भेजा हैदराबाद से सेंटर फॉर मोलिकुलर बायोलॉजी, और उन्होंने आकर सैंपल्स लेकर हैदराबाद जाकर हमें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में साबित कर लिया दैट दिस सैंपल कैन नॉट बी ऑफ एनी अदर पर्सन देन द ऑफस्प्रिंग ऑफ जो उनके माता पिता के जो सैंपल लिए थे उससे साबित कर लिया उन्हीं की बेटी है कहकर। फिर भी हमें और एक भी किया, स्कल सुपर इम्पोजिशन टेस्ट होता है वो भी कराया, उससे भी साबित कर लिया दिस इज नैना साहनी। सब कुछ करने के बाद हमें चार्जशीट फाइल कर लिया, 26 डेज के अंदर हमें चार्जशीट कोर्ट में डाल दिए।
सालों तक चले मुकदमे के बाद सुशील शर्मा को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, हाई कोर्ट ने भी ये सजा बरकरार रखी। बाद में 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सजा को उम्र कैद में बदल दिया। जेल में सुशील शर्मा पुजारी बन गया, वो अब तक तिहाड़ जेल में 23 साल काट चुका है और अब इस तरह का मूव है कि उसे अच्छे व्यवहार के आधार पर हमेशा के लिए जेल से छोड़ दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट को भी मना लिया, सुप्रीम कोर्ट कहता है इतना रिफॉर्म हुआ है इतना बढ़िया, यू नो सबके लिए पूजा कर रहा है सब कुछ, ये दैट इज द इम्प्रेशन दैट एवरीबॉडी इज गॉट, मुझे कोई दिक्कत नहीं इसमें, हमें तो पुलिस ने जो काम करना था कर लिया है, हमारा देश का सिस्टम है कानून है नियम है और ये सारे नियम के मुताबिक जो फैसला करने के लिए जुडिशरी है वो अपने समझ से वो कैसा कर सकते हैं वो तो उनकी दैट इज देयर प्रिविलेज।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
विवेचना आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। देश दुनिया की ताज़ा खबरों और विश्लेषणों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं bbchindi.com पर। जैसे कि आप अभी कर्नाटक में चल रही राजनीतिक उठापटक जैसे ही 5 ऐसे मौकों के बारे में पढ़ सकते हैं जब फ्लोर टेस्ट ने सियासी बाजी पलट दी थी। बहरहाल बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला दीपक जसरोटिया ने, फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुँचाया गुरप्रीत ने। कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को दे इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।